पृष्ठ संख्या 87। शक्तिशाली देशों के सम्मुख जिस तरह से जापान ने घुटने टेके, उसका विरोध देश में जनसाधारण और सैनिक तथा गैर सैनिक वर्गों द्वारा किया गया। जापान को इस शर्मिंदगी से बचने के लिए जापान को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए एक आक्रामक विदेश नीति या जरूरत पड़ने पर युद्ध की मांग की गई। सामरिक कारणों के आधार पर इस समय के महत्वपूर्ण प्रचारक तोकुतोमी सोहो ने लियाओतुंग प्रदेश पर अधिकार करने के लिए कहा। उनके विचारों के अनुसार यह प्रदेश जापान के प्रसार और मंचूरिया रूस से बचाव के लिए जरूरी था। उस समय शर्मसार होने के साथ साथ यह भी एहसास था कि लगातार होने वाला युद्ध जापान पर वित्तीय प्रतिबंध भी लगाएगा। चीन के साथ हुआ युद्ध 6 माह तक चला और इसमें होने वाला व्यय युद्ध पूर्व बजट से दुगुना था। सार्वजनिक बांड जारी करके इस आपातकालीन खर्च के लिए धन अर्जित किया गया था। यदि शिमोनोसेकी की संधि को कार्यान्वित किया जाता तो जापान इस युद्ध में हुए व्यय को चीन से प्राप्त कर सकता था, परंतु इस संधि के लागू होने तक स्थिति अनिश्चित थी। जापान ने जिस तरह से तीन प्रमुख शक्तियों के सम्मुख आत्मसमर्पण किया, वह इस तथ्य पर आधारित था कि चीनी समुद्रों में रूसी नौसैनिक शक्ति बहुत अधिक थी और जापानी इससे अनभिज्ञ नहीं थे। फ्रांस और जर्मनी महत्वपूर्ण कारक नहीं थे, बल्कि रूसी नौसेना ही वास्तविक खतरा थी। शीतकालीन माह में रूसी फौजें जापानी संधि बंदरगाहों में आती जाती रहीं और जापानी नौसैनिक अधिकारियों द्वारा यह सही निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी अपनी सेना पीत सागर में और ताइवान के आसपास इस तरह से बिखरी हुई थी कि रूसी खतरे का तुरंत सामना करने में अक्षम थी। वे यह नहीं समझ पाए कि रूसी खतरा केवल एक भय मात्र ही था। इसी भय के कारण जापान झुक गया। अब वह कोरिया में अपने नियंत्रण को मजबूत करने तथा और शस्त्र इकट्ठे करने में व्यस्त हो गया। यह सोचना गलत होगा कि जापान द्वारा रूस से अंततः युद्ध करने का निश्चय कर लिया गया था, परंतु यह भी सत्य है कि 1895 से जापान अपने विस्तारवाद के रास्ते में रूस को मुख्य अवरोध मानता था। अपने लाभ के लिए रूस ने त्रिपक्षीय हस्तक्षेप में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। 1895 के संकट के उपरांत रूस ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोरिया में अपने स्थिति को मजबूत कर लिया था। एक ओर जापानी ऋण की प्रथम किस्त का भुगतान करने के लिए रूस ने चीन को वित्तीय सहायता प्रदान की और इस सहायता के बदले उसने मंचूरिया के अंदर में रेलवे का विस्तार करके ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की लंबाई कम कर ली। दूसरी ओर महारानी की हत्या के उपरांत रूस ने कोरिया में जापान के प्रति बढ़ते हुए विरोध का फायदा उठाया तथा सहायता और सैनिक सुरक्षा प्रदान करने के बहाने उसने वहां अपने प्रभाव और सैनिक अधिकारियों की संख्या को बढ़ा लिया। जहां तक रूस द्वारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण का प्रश्न था, पेचिंग में इसके प्रति उत्पन्न शक के बावजूद रूसी दूत उन्हें यह आश्वासन देने में सफल रहा कि इसके माध्यम से वह जापान से चीन का बचाव करेगा। चीनी दूतावास को मॉस्को में यही विश्वास देकर कुछ समझौता किया गया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। यह समझौता 50 वर्षों तक लागू रहेगा। दूसरा, जापानी हमले की स्थिति में रूस चीन को सहायता देगा। तीसरा, आपसी समझौते के उपरांत ही शत्रु पक्ष से संधि की जाएगी। चौथा, आपातकाल में रूसी युद्ध पोतों का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा, हेई लुंग चियांग और चिलिन होते हुए व्लाडिवोस्टोक तक रूस द्वारा रेलवे का निर्माण किया जाएगा और उसका प्रयोग सामान और सेना के आवागमन के लिए किया जाएगा। जिस संभावित रूसी जापानी बैंक को यह रेलवे सुविधाएं दी जानी थी, उस पर पेचिंग में 3 महीने तक बहस हुई और उसके उपरांत ही सितंबर 1896 में बैंक तथा रेलवे संबंधी समझौता निर्धारित और स्वीकृत किया गया। जहाँ तक कोरिया का प्रश्न है, न केवल चीन जापान युद्ध 1894-95 के दौरान बल्कि शिमोनोसेकी की संधि के उपरांत भी कोरिया पर जापान का सर्वोच्च अधिकार बना रहा, परंतु सैद्धांतिक रूप में शिमोनोसेकी की संधि ने कोरिया की स्वाधीनता को स्वीकार किया था। इसी दौरान महारानी मिन के सहयोग से कोरिया के शाही दरबार में एक गुट द्वारा जापान का विरोध किया गया। अक्टूबर 1895 में महारानी मिन की हत्या कर दी गई और इस आशंका ने कि इस हत्या में जापान का हाथ था, कोरियाई शासक और कोरियावासियों को जापान से और अधिक दूर कर दिया। इस स्थिति का फायदा रूस ने उठाया और चेमुलपो में उसने अपनी नौसेना भेज दी, जो सियोल पहुंचकर षड्यंत्र में भागीदार हो गई। शाही दरबार में रूसी प्रतिनिधियों की सहायता से राजा ने रूसी दूतावास में शरण ली और वहां से अनेक जापान समर्थक कोरियाई अधिकारियों को पदच्युत किया। उन्होंने जापानी सैनिक निर्देशकों को निकाल दिया और जापानी गलतियों के लिए अनेक जापानी अधिकारियों को सजाएं दी। कोरिया के शासक ने रूसी व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की और रूसी सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए कदम भी उठाए, परंतु बाद में जापान के पहल करने पर 28 मई 1896 को रूस और जापान के बीच समझौता हुआ, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोरिया की स्वाधीनता को स्वीकार किया गया और उसमें सुधार लागू करने की मांग को दोहराया गया। परंतु इसमें एक गुप्त प्रस्ताव भी था, जिसके अनुसार रूस और जापान समान रूप से अपनी सेनाएं कोरिया में रख सकते थे। यह भी स्पष्ट किया गया कि रूसी अधिकारियों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी 1897 में कोरिया के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। अब रूसी सलाहकारों की ही नियुक्ति की जानी थी, लेकिन नवंबर 1897 तक वास्तव में जापानी अधिकार और प्रभाव को हटाकर रूस कोरिया में शक्तिशाली हो गया। रूस ने न केवल जापान की उपेक्षा कर और उसे नुकसान पहुंचाकर कोरिया और मंचूरिया में और अधिकार तथा स्पष्ट सुविधाएं प्राप्त की, बल्कि चीन की राजनीतिक और सैनिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने स्थिति को और भी मजबूत कर लिया। पहला अवसर रूस को तब प्राप्त हुआ जब पूर्वी एशिया में कोयले का डिपो बनाने के उद्देश्य से जर्मनी ने सैनिक बल का प्रयोग करते हुए चियाओचोउ खाड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जर्मनी ने बॉक्सर आंदोलनकर्ताओं द्वारा 2 जर्मन कैथोलिक धर्म प्रचारकों की हत्या होने पर हस्तक्षेप किया। चीन ने इस हस्तक्षेप का विरोध सैनिक बल द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय अवरोध स्थापित करके नहीं किया, बल्कि जर्मनी की कार्यवाही के खिलाफ रूस को कुछ समय के लिए चीनी बंदरगाह पर नियंत्रण स्थापित करने दिया। प्रारंभिक उधेड़बुन और दुविधा के उपरांत आर्थर बंदरगाह पर अधिकार करने के लिए रूस ने जहाजी बेड़े भेजे, जिन्होंने दिसंबर 1897 में इस बंदरगाह पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन घटनाओं की जापान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जापान ने जर्मनी की अपेक्षा रूसी गतिविधियों को अधिक भय की नज़र से देखा, क्योंकि इससे उसी क्षेत्र में रूस पहुंचा गया था जहां से रूसी दबाव के कारण जापान को 3 वर्ष पूर्व निकालना पड़ा था। जन विचारधारा यदि एकमात्र कारक होता तो जापान अवश्य विरोध करता, परंतु रूस ने जापान को भेजे गए अपने संदेश में यह स्पष्ट किया था कि चीन की अनुमति से ही उसके जहाज आर्थर बंदरगाह पहुंचे थे और इसका उद्देश्य केवल 1896 में हुए चीन रूस समझौते के अंतर्गत जर्मन कार्यवाही को रोकना था। रूस को दूसरा अवसर तब प्राप्त हुआ जब चीन जापान को युद्ध क्षति का हर्जाना देने में असमर्थ रहा। जापान को यह धन अपने पुनर्निर्माण के लिए चाहिए था। चीन ने इस क्षति धन की प्रथम किस्त फ्रांस और रूस से 1.6 करोड़ पाउंड का ऋण देकर जुलाई 1895 में अदा कर दी थी। यह धन फ्रांस द्वारा एकत्रित किया गया था और इसकी गारंटी रूस ने चीनी सीमा शुल्क से दी थी। चीन ने अगले 6 माह तक और उधार न मांगने का आश्वासन दिया था, परंतु मार्च 1896 में एक बार फिर चीनी सीमा शुल्क पर इंग्लैंड जर्मनी ने दोबारा उतना ही धन प्रदान करवाया। दिसंबर 1897 में यह स्पष्ट हो गया कि जापानी सेनाओं को वेई हाईवे से हटाने और जापान की क्षतिपूर्ति का पूरा धन चुकाने के लिए एक बार फिर उधार लेना जरूरी था। इस धनराशि को एंग्लो जर्मन और फ्रांसीसी रूस गठबंधनों ने देने का भरसक प्रयास किया। जापान भी इसके लिए उत्सुक था क्योंकि इसके लिए पीत सागर में वेई हाईवे जैसे अड्डों को प्राप्त करने की उपेक्षा धन अधिक जरूरी था। चीनी राजनेताओं के किसी एक गुट के पक्ष में निर्णय लेने तक रूस, जर्मनी और दूसरे देशों के लिए चीन से स्पष्ट रूप में सुविधाएं मांगना उचित नहीं था। उधार देने वाले दोनों ही पक्ष चीन के समक्ष कड़ी शर्तें रख रहे थे। फ्रांसीसी रूसी ऋण इस शर्त पर मिल सकता था कि केवल रूस को मंचूरिया में रेलवे निर्माण और बंदरगाह बनाने का अधिकार दिया जाए। एंग्लो जर्मन सहायता इस शर्त पर टिकी हुई थी कि उसके बदले में दोनों को सुदूर पूर्व में अधिकार क्षेत्र दिए जाएं। इस असहायता की स्थिति में चीन ने जापान से आखिरी किस्त तुरंत न मांगने के लिए कहा, परंतु उसे नकारात्मक जवाब मिला। चूंकि चीन मंचूरिया और अर्थर बंदरगाह रूस को देने के लिए तैयार नहीं था, उसने एंग्लो जर्मन बैंकरों के समक्ष घुटने टेक दिए और मार्च 1897 में उनके साथ समझौता किया। इस समझौते के अनुसार उसे जापान को देने के लिए धन प्राप्त हुआ और उसने 99 वर्षों के लिए जर्मनी को चियाओचो में अधिकार दे दिए। धन प्राप्ति के बाद जापानी सेनाओं ने वेई हाईवे से लौटने पर उस प्रदेश को ब्रिटेन को सौंपना भी निश्चित किया गया। पृष्ठ संख्या 90। ब्रिटेन और जर्मनी को मिले इन अधिकारों के बाद रूस ने यह मांग की कि उसे अर्थर बंदरगाह और तालियेन तटस्थ सीमाओं इस सहित 25 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाए। आर्थर बंदरगाह दूसरे देशों के जहाजों के लिए बंद और तालियेन एक मुक्त बंदरगाह अर्थात जिसके आंतरिक भाग नौसेना के प्रयोग के लिए थे के रूप में खोलना तय हुआ। इस तरह तय हुआ कि तालियेन एक मुक्त बंदरगाह जो संधि बंदरगाहों की अपेक्षा कम आरामजनक था के रूप में कार्य करेगा। इस संधि में पूर्व चीनी रेलवे कंपनी चाइनीज ईस्टर्न रेलवे कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह पट्टे पर दिए गए क्षेत्र तक रेलवे का निर्माण करें। यद्यपि इस पट्टा भूमि पर चीन का अधिकार था, परंतु असैनिक और सैनिक प्रशासन आर्थर बंदरगाह या तालियेन से ही किया जाना था। इस संधि की दूसरी शर्तों के अनुसार दूसरे देशों की सुविधाओं या अधिकार प्राप्ति पर रोक लगा दी गई। दूसरे शब्दों में इस दूसरी संधि के परिणाम स्वरूप दक्षिणी मंचूरिया के आधे हिस्से में रूस को लगभग एकाधिकार प्राप्त हो गया। चीनी सीमा शुल्क अधिकारी रॉबर्ट हार्ट ने सही कहा था कि इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप छिंग सरकार पूरी तरह से रूसी संरक्षण के अधीन हो गया। रूस यह जानता था कि आर्थर बंदरगाह पर उसका अधिकार जापान को नाराज कर देगा, और इसलिए जापान को शांत करने के उद्देश्य से उसने कहा कि वह कोरिया में जापान के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, परंतु इसके बदले जापान से उम्मीद की गई कि वह मंचूरिया और आर्थर बंदरगाह पर रूसी प्रभाव को स्वीकार करें। इतो हिरोबुमी के नेतृत्व में जापान इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इससे दोनों पक्षों के बीच विद्यमान संघर्ष का कारण समाप्त हो सकता था। परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध मनकान कोकान सुझाव यानी कोरिया के बदले मंचूरिया प्रस्तुत किया गया, और इसके आधार पर अप्रैल 1898 में निशी रोजन ने तय किया कि कोरिया के आंतरिक मामलों में वे हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाएंगे, और यदि कोरिया सैनिक या वित्तीय सहायता की मांग करता है तो उस स्थिति में दोनों देश आपस में मिलकर निष्कर्ष निकालेंगे। रूस ने स्पष्ट रूप से चीन में जापान की विकासशील व्यापारिक संस्थाओं और प्रभुत्व को स्वीकार किया, और जापान और कोरिया के व्यापारिक और औद्योगिक संबंधों को भी स्वीकारा। इस संलेख में मंचूरिया का जिक्र भी नहीं किया गया, और केवल कोरिया में रूस और जापान के संतुलन को स्पष्ट किया गया। इसने पिछले 2 वर्षों की तुलना में जापान की स्थिति को और मजबूत किया, परंतु मंचूरिया और कोरिया की गतिविधियों के संदर्भ में रूस को अधिक मुनाफा हुआ तथा जापान की स्थिति कमजोर हुई। जापान के अगले प्रधानमंत्री ओकुमा शिगोनोबू रूस को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जुलाई अगस्त 1898 में हानखोउ, शांसी, थिएनचिन ने विदेशी आवास स्थलों में अधिक अधिकार प्राप्त करके जापान की स्थिति को मजबूत किया। 1899 में फुचोउ और शियामन में इसी तरह के अधिकार प्राप्त किए गए। ओकुमा चीनी दरबार से रूसियों को बाहर निकालकर चीन को जापान के प्रभाव में लाना चाहते थे, परंतु चीन में चल रहे 100 दिवसीय सुधारों से जुड़ी राजनीति के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। अक्टूबर 1899 से ओकुमा के उत्तराधिकारी यामागाता आरितोमो ने भी रूस की तुलना में जापानी प्रभाव को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। एक ओर वह डायट में सैनिक बजट पारित करवाने में तब सफल हुए जब पूर्वी एशिया में उत्पन्न संकट के दौरान राष्ट्रवादी प्रभाव और भावनाएं प्रबल हो रही थी, और दूसरी ओर निशी रोजन संलेख का फायदा उठाते हुए उसने कोरिया में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को तीव्र करके जापान की स्थिति को और मजबूत कर लिया। परिणाम स्वरूप कोरिया में रहने वाले जापानियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। वहां पर जापानी पत्राचार का विकास हुआ, और 1900 तक कोरिया के निर्यात में जापान का प्रमुख स्थान हो गया। जापान ने पहले सियोल, चेमुलपो और बाद में सियोल फुसान तक रेलवे निर्माण के लिए भी अधिकार प्राप्त किया। इससे पहले कि कोई अंतर्राष्ट्रीय विरोध उत्पन्न हो, रूस ने भी अविलंब ढंग से मंचूरिया और लियाओतुंग में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। समय भी उपयुक्त था, क्योंकि ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में उलझा हुआ था और अमेरिका मुक्त द्वार नीति को बढ़ावा दे रहा था। इस तरह जैसे ही पूर्वी चीनी रेलवे विस्तार के लिए सुविधाएं दी गई, उसी समय चीनी अधिकारियों से सांठगांठ करके रूस ने रेलवे निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1899 के अंत तक आर्थर बंदरगाह और तालियन से शानयांग का रास्ता, जो 300 मील लंबा था, तथा 1900 के मध्य तक हार्पिन के उत्तर में निर्मित रेलवे कार्यरत हो गई। रेलवे के अलावा अनेकों बैंकों की स्थापना भी की गई। व्लाडिवोस्टोक और आर्थर बंदरगाहों को नौसैनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया, और वहां अनेक इमारतों की स्थापना भी की गई। इस तरह रूसी सलाहकारों और सीमा शुल्क अधिकारियों की संख्या बढ़ने लगी। जिस गति से रूस ने विभिन्न सर्वेक्षण कार्यों और रेलवे विकास में धन नियोजित किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि रूस अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ समझौतों के लिए भी तैयार था। वह युद्ध का रास्ता अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस क्षेत्र में उसकी इतनी सैनिक तैयारी नहीं थी। जापान की तरफ से भी प्रत्यक्ष सामना करने की इच्छा नहीं थी, और वह भी मनकान कोकान फॉर्मूले के अनुसार मंचूरिया और कोरिया संबंधी एक मुस्त समझौता ही चाहता था। यद्यपि रूस इसके लिए तत्पर नहीं था, परंतु जापान निशी रोजन संलेख के माध्यम से प्रायद्वीप में आर्थिक प्रवेश पा रहा था, और इस तरह वह अपने प्रारंभिक प्रभाव तथा शक्ति को मजबूत बनाती हुए रूस को बाहर निकाल सकता था। ऐसा करने वाला जापान ही एकमात्र देश नहीं था, दूसरी शक्तियां भी रूस पर अंकुश लगा रही थी। उदाहरणार्थ 1898 में ब्रिटेन ने एंग्लो रूसी समझौता किया, जिसके अनुसार रूस ने यांगत्ज घाटी में रेलवे सुविधाएं न मांगने का आश्वासन दिया, और यह भी स्वीकार किया कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित रेलवे निर्माण का विरोध नहीं करेगा। अमेरिका ने चीन की, अर्थात दूसरे शब्दों में मंचूरिया की सुरक्षा का प्रश्न उठाकर उस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को प्राप्त किया, जो एक देश विशेष को विशेष सुविधाओं और अधिकारों के साथ भूमि पट्टे या प्रभाव क्षेत्र देने का विरोधी था। परिणाम स्वरूप जापान रूस विरोधी शक्तियों के गुट का एक सदस्य बन गया, परंतु भविष्य में वह कौन सी नीतियां अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं था।